लिए मुश्किल होता है, पर जहाँ इतना बड़ा मंदिर है, जहाँ 100 से ज्यादा ब्रह्मचारी है, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका केयर करना, प्रभु जी ने सालों साल तक वो सेवा की है। और करंटली प्रभु जी तलाश्री फार्म के इंचार्ज है और वहाँ उन्होंने शून्य से काम करना शुरू किया है। प्रभु जी अभी किसी को बता रहे थे कि 1 साल से उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है और वो सब करते हुए हाँ सैटरडे संडे को, मंडे टू फ्राइडे, हाँ हम लोग सोचते हैं मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे काम किया, अभी सैटरडे संडे नो काम, फ्री फ्री का आउट, ऐसा सोचते हैं हम। पर प्रभु जी सैटरडे संडे छुट्टी नहीं लेते हैं, वो सैटरडे संडे बॉम्बे आते हैं और बॉम्बे में उनके प्रोग्राम, उनके कांग्रीगेशन बहुत सारे प्रोग्राम है, नाला सोपारा, मरोल, अंधेरी टेंपल में, टेंपल में मुझे याद है संडे को बहुत ही ब्यूटीफुल कांग्रीगेशन प्रोग्राम होता है। और प्रभु जी का सबसे खासियत जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, प्रभु जी का कीर्तन। पहली बार जब मैं उनको देखा तो प्रभु जी को, प्रभु जी के संडे शाम का स्लॉट रहता है टेम्पल में, वो देख के मुझे बहुत ही आकर्षित हुआ और मुझे ऐसा लगा कि प्रभु जी के लिए कुछ सेवा तो मुझे जरूर करना है ये लाइफ टाइम में, तो आज ही एक सेवा है ये। और प्रभु जी ने इतने सारे लोगों को प्रीच किया है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अप्रोक्स 300 या 500 से ज़्यादा भक्तों को कल्टिवेट कर रहे हैं। और वही आप देख सकते हैं, वही कांग्रीगेशन है जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम चल रहा है, जो प्रोग्राम अटेंड करने वाले भक्त हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, सभी आज आए हैं। तो आज हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे और हरे कृष्णा मंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और प्रभु जी का बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करेंगे क्योंकि प्रभु जी स्पेशली यहाँ संग देने के लिए स्पेशली तलाशी से यहाँ पे आए और आप हमारा प्रभु जी का एक और क्लास होगा 4 से 5:30 बजे। तो हाँ अभी प्रभु जी इंट्रोडक्शन देंगे और एक प्रभु जी आएंगे और दूसरा इंट्रोडक्शन देंगे वो, तो ये आप लाभ उठाइए, आज बहुत ही स्पेशल दिन है, हम सब साथ में मिलके अच्छे से भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग के बीच में हिज ग्रेस प्रेमांजन प्रभु भी आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ये मेरा कोई क्लास नहीं है, यदि हमारा सब कुछ शेड्यूल के अनुसार चला तो हम लोग 4 बजे बैठेंगे सत्संग के लिए। जस्ट दो शब्द आप लोगों के लिए बोलूँगा मैं, इसके बाद प्रभु जी आप लोगों को यहाँ के जिस स्थान पे आप आए हैं GEV वाड़ा मिनी वृंदावन में, तो प्रभु जी यहाँ का महिमा आप लोगों को बताएंगे। और जो वॉलंटियर लोग हैं जो इस टीम को पूरा मैनेज कर रहे हैं वो लोग आप लोगों को बताएंगे कि आगे का हमारा कैसे शेड्यूल है, क्या टाइमिंग है, ये बताया जाएगा। तो अति संक्षेप में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा, आप लोग को इतनी बड़ी संख्या में देखकर यही लगता है, क्योंकि मेरा प्लानिंग जब हम लोगों ने डिसाइड किया था तो लगभग 125 और 150 लोगों का प्लानिंग था आने का, लेकिन जैसे ही हमने चर्चा प्रारंभ की तो लोग आते गए और कल से तो हमको परसों से मना करना पड़ा लोगों को, नई संख्या बहुत बढ़ने वाली थी। तो इससे हमको पता चला कि जैसे कि आप लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि कोरोना हटे, गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉकडाउन जो था वो ढीला हो और हम बाहर निकले, कैद हो गए थे हम घरों में, तो तड़प दिखी, कई सारे भक्त तड़प रहे हैं अभी भी, वो परसों से हमको परेशान कर रहे थे कि प्रभु जी हमको भी ले लीजिए, खड़ा होके जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे। लेकिन मैंने परसों बात किया कमेटी लोगों से, जो मेंबर थे, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बोले प्रभु जी अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ भी इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। और कितने लोग तो मना करने के बावजूद भी कैसे भी आज बस में घुस गए। मुझे सुबह फ़ोन आया, प्रभु जी इनको मना करिए, इनका बुकिंग नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बस में घुस रहे हैं। हम कह अभी इनको घुसाना ही पड़ेगा अभी आ गए घर से तो क्या करेंगे। तो हम सभी लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं और रियली अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि कोरोना के बाद आप सभी लोग काम धंधे के लिए तो निकलते ही रहे होंगे, लेकिन किसी ऐसे पिकनिक टूर पे, यात्रा पे, स्पिरिचुअल यात्रा पे आप लोग का पहला छोटा सा टूर होगा। तो हम लोगों को किसी को भी बंधन अच्छा नहीं लगता है, हम सभी लोग आज़ाद होना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हम सभी को आज़ादी चाहिए, सबको आज़ाद होना अच्छा लगता है। शास्त्रों के अध्ययन से हमको पता चलता है कि जीवात्मा भी संसार के बंधनों में बंधा हुआ है और आप लोग को अनुभव है कि एक दो साल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा करके आप लोग को घरों के अंदर बंद किया तो कैसा महसूस हो रहा था, कितनी पीड़ा हो रही थी, कैसे तो हम निकलना चाहते थे। तो आत्मा भी एक दो साल से नहीं, अनादि काल से अनादि जन्मों से इस संसार के बंधनों से निकलकर मुक्त होना चाहता है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसकी स्थिति ऐसे ही है जैसे कि अभी सरकार ने छूट दिया, चलो कोरोना केस कम आ रहे हैं, अभी छूट है, आप लोग अपना काम धंधा करिए। हम बहुत खुशी हो जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, तब तक सेकेंड वेव, थर्ड वेव, भगवान न करे फोर्थ वेव का सामना करना पड़े, सामने आ जाता है और हमारा तो प्लानिंग बनता है कि अब ये करेंगे, लॉकडाउन हट गया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जैसे ही लॉकडाउन लगता है हमारा सब योजना पानी फिर जाता है, हम फिर दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार अनादि योनियों भ्रमण करने के बाद भगवान हमको ये मनुष्य जीवन देते हैं, सुंदर मनुष्य जीवन देते हैं, जिस मनुष्य जीवन को पा करके हमारे पास वो सुअवसर होता है, वो चांस होता है कि हम आत्मा को मुक्त कर दें। शास्त्र में एक श्लोक आया है, निदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, बोल रहे हैं कि जगह नहीं बीच में जाने के लिए, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आगे आ जाइए आप लोग फास्ट। निदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभवस्तेरितम पुमान न तरेस आत्महा। कि जो मनुष्य जीवन है यह सुंदर नौका के समान है, जिस नौका का आश्रय लेकर के हम भव सागर को पार कर सकते हैं, जिसमें भगवान ने हमको सुंदर बुद्धि प्रदान किया है, गीता वेद शास्त्र पुराण प्रदान किया है, जिसका आश्रय लेकर हम मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को, वास्तविक कर्तव्य को समझ सकते हैं और इस मनुष्य जीवन को नौका बना करके संसार सागर को, भव सागर को पार कर सकते हैं, आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन इतना अवसर प्राप्त होने के बावजूद भी हम आत्मा का हनन कर देते हैं, आत्मा को फिर उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर में फेंक देते हैं। अवसर मिला था, भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में होते हैं भगवान कृपा करके किसी किसी भाग्यशाली जीव को भगवान दर्शन देते हैं, और जब गर्भ के अंदर भगवान का हम दर्शन करते हैं तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान हम बहुत दुखी हैं, इस नरक में पड़े हुए हैं, संसार के कई बार चक्कर हमने काटे हैं और हमको आभास हो गया है कि संसार दुख से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है, इस बार इस नरक से हमको निकाल दीजिए, मैं बाहर आते ही आपका भजन करूंगा, इस लॉकडाउन से निकाल दीजिए। बहुत प्रार्थना करते भगवान से और हम बाहर आते हैं, और बाहर जैसे ही आते हैं हम चिंटू मिंटू पप्पू लोग हमको दुलार करते उसमें फंस जाते हैं, स्वजन के घेरे में आ जाते हैं और पुनः हमको ये संसार सुंदर लगने लगता है, पुनः संसार की चीजें अच्छी लगने लगती है जो क्षणिक हैं, जो दुख से मिश्रित हैं, लेकिन हम भ्रम में पड़ जाते हैं और पुनः इस संसार के जाल में फंस जाते हैं, पुनः आत्मा इसी संसार के चक्कर में फंस जाता है, हम निकल नहीं पाते हैं। तो जैसे आपको कुछ दिन के लिए घर में रखा गया, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा फीलिंग हो रहा है, और आपको दिन भर अच्छा फीलिंग होगा, आप स्वतंत्र रूप से घूमेंगे, हाँ आप बंधन से निकल कर आए हैं, ऐसे भी तो बॉम्बे का जो जीवन है एकदम पैक्ड जीवन है, हाँ आप लोग को आनंद की अनुभूति होगी, स्वच्छंद वातावरण में आप थोड़ा घूमेंगे टहरेंगे। तो उसी प्रकार आत्मा को भी बंधन का जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी संसार के बंधनों से मुक्त करना है, और मुक्त करने के लिए श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं कि पांच चीजों का होना बहुत आवश्यक है, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्तेर श्रद्धाय सेवन। यदि हम आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं तो हमको पांच चीजें करनी पड़ेंगी, जो इस मनुष्य जीवन हमको सुलभ है। क्या क्या पांच चीजें हैं हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको प्रेमांजन प्रभु के मुख से यहाँ का ग्लोरिफिकेशन सुनना है जहां पर हम आए हैं। अति संक्षेप में मैं सार बता देता हूं कि आप लोग आए हैं तो क्या उद्देश्य, हमको दिन भर घूमना है, क्या लेना है यहां पर आकर के, मैं वो चीज बताना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से हमको यहां का परिक्रमा करना है। तो पांच चीजें जरूरी हैं आत्मा को मुक्त करने के लिए, जिसमें से पहला है साधु संग, भक्तों की संगति, साधु संग, साधु संग, सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, क्योंकि जैसे संगति में रहेंगे वैसा हमारे जीवन में उसका असर पड़ेगा। यदि हम भक्तों के संगति में रहेंगे तो भक्तों के संगति में रहकर हम भगवान की भक्ति सीख सकते हैं, कैसे भगवान की भक्ति करनी है, तो साधु संघ का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद है नाम संकीर्तन, जो भगवान का नाम हम जप कर रहे हैं, जो आज से 550 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हरि नाम संकीर्तन जो है ये कलयुग में सारे रोगों की दवा है। हमारा मन अनेक अनेक रोगों से ग्रसित है, जिसको मानस रोग बोलते हैं, कोई ऐसा दवा नहीं बना है जिसको खा लें से हमारे मन के रोग दूर हो जाएंगे। शरीर के रोग दूर हो सकते हैं लेकिन मन के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर्य, ऐसे हजारों लाखों वासनाएं हैं, हजारों लाखों गंदगियां हैं जिससे मन हमारा भरा हुआ है, इसके लिए कोई मेडिसिन बना नहीं है आज तक कि आप खा लो और आपका मन ठीक हो जाएगा। यदि उस मन को ठीक करना है तो उसका एकमात्र औषधि है, क्या औषधि है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण और भगवान की लीला, भगवान की कथा, कथामृत। भागवतम की महिमा में कहा जाता है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हमको रस चाहिए, हमको आनंद चाहिए, इस संसार में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, इस संसार में आनंद नहीं मिल सकता है। सूरदास जी भगवान के एक बहुत प्रिय भक्त हैं, एक बहुत अच्छे भजन में वो गाते हैं, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पक्षी पुनः जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, समुद्र के बीच में एक जहाज है, जहाज के ऊपर 20 समुद्र में जहाज चली गई है और उसके ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है और पक्षी के अंदर विचार आए कि चलो जाकर घूम करके थोड़ा आनंद लेके आता हूं, और उस जहाज का आश्रय छोड़ करके पक्षी उड़ जाए अनंत आकाश की तरफ कि जाकर के घूम के आनंद लेके आता हूं। आप खुद सोचिए, बुद्धिमत्ता से बताइए कि उस पक्षी को आनंद कहां मिलेगा, कहां मिलेगा पक्षी को आनंद। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि उड़ी जहाज की पक्षी पुनः जहाज पे आए, जब तक वो दोबारा मुड़ करके जहाज का आश्रय नहीं लेगी तब तक क्या वो पक्षी सुखी हो सकती है। उसके पहले का जो सुख का कल्पना है वो उसका भ्रम है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, अनंत सागर है, कहां तक उड़ोगी तुम, कहां जाओगी, कहां आश्रय लोगी, कहीं आपको शेल्टर नहीं मिलने वाला है। यदि तुमको सुख चाहिए, सुख तभी मिलेगा जब तुम दोबारा उस जहाज का आश्रय ले लोगी, तभी तुम सुखी हो सकती हो। उसी प्रकार भगवान से विमुख होकर संसार में हम सुख खोज रहे हैं, नहीं मिल सकता है। मिलेगा है तभी तो हम लोग संसार में सुख खोज रहे हैं, मिलता है लेकिन जितना चाहिए, अनंत सुख चाहिए मेरे मन को, अनंत अनंत सुख चाहिए लेकिन उतना मिलता नहीं है। यदि आपके मन को सागर जितना सुख चाहिए, जितना सागर में पानी है, तो आपको मिलेगा कितना? तो एक आचार्य कहते हैं कि नीम के पत्ता, नीम के पेड़ के पास जाओ, उसका डाली में से एक सीक तोड़ लो, सीक उसका पत्ता निकाल लो, सीक को समुद्र में डुबो और निकाल के छिड़क दो उसको, उसमें क्या निकलेगा? पानी की बूंद निकलेगी। तो जो बूंद आता है उतना ही जो आपको सुख मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए समुद्र जितना सुख मिलने वाला है, नहीं कि भगवान ने संसार ऐसा क्रिएट किया, ऐसा बनाया है कि जितना आपको चाहिए इतना मिलने वाला है, नहीं। तो कैसे मिलेगा? तो मिलेगा भगवान की कथाओं को श्रवण करके, उसका लाभ लेकर के। भागवत श्रवण, श्री मूर्तेर मथुरावास, श्री मूर्तेर श्रद्धावर्षिवन, और भगवान का जहाँ धाम है वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, जो भगवान के धाम है वहां पर जाकर के वास करना, और मूर्तेर श्रद्धा या भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं उनकी श्रद्धा सेवा करना, पूजा करना, नमस्कार करना, उनको भोग लगाना, मंदिर का मार्जन करना, सफाई करना, अपने पैरों से चलकर मंदिर में जाना, इस शरीर से भगवान को प्रणाम करना, इस वाणी से भगवान के लिए दो शब्द बोलना, स्तुति करना भगवान का, उनको प्रणाम करके अपने मन के भावों को उनके सामने व्यक्त करना, हाँ, इन सब चीज़ों को करेंगे हम तब जाकर आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आज जहाँ पर आप आए हैं पूरा दिन निकाल करके आज घूमने के लिए, तो जो रूप गोस्वामी ने पाँचों चीज़ें बताई हैं आज के लिए, आज का दिन आपके जीवन में आपको पांचों चीजें एक साथ सुलभ करा रहा है, पांचों चीजें। आप घूमेंगे यहां पर किसके साथ घूमने वाले हैं? भक्तों के संग घूमने वाले हैं। बहुत सारे भक्त रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, बहुत सारे भक्तों का दर्शन होगा, तो भक्तों के साथ आपको घूमने का मिलेगा। फिर नाम संकीर्तन होगा, यहां पर कोई डीजे और इधर उधर गाना नहीं बजेगा, यहां पर जो भी गाएंगे सब लोग क्या गाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज पूरा दिन यही चलने वाला है, हर जगह आपको यही मिलेगा, यही कीर्तन चलेगा। तो साधु संग मिलने वाला है, नाम कीर्तन मिलने वाला है, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको कथा श्रवण करने को मिलेगा, और समय रहा तो हम 4 बजे स्पेशल भागवत कथा श्रवण करेंगे, राइट? तो नाम संकीर्तन हो गया, साधु संघ हो गया, कथा का श्रवण हो गया, और आप जहाँ पर आए हैं ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। कहाँ पे आए हैं आप? आप आए हैं मिनी वृंदावन धाम, जो वृंदावन धाम से अभिन्न है। आप लोगों में से कई लोग वृंदावन गए होंगे, राइट? कई लोग जाने की योजना बनाए होंगे लेकिन नहीं गए होंगे। कई लोग महिमा सुन सुन के तड़प रहे होंगे, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है, हमको वृंदावन देखना है। तो जो लोग वृंदावन नहीं गए हैं, जो लोग गए हैं वो लोग घूमे और घूम करके वृंदावन पहुंच जाए, रियल वृंदावन पहुंच जाए, और वहां पर मन से वृंदावन धाम का परिक्रमा करें। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग वृंदावन धाम का यहाँ पर ट्रेलर देखें और सोचे कि कैसा मूवी होगा, वृंदावन धाम कैसा होगा, जब ये मिनी वृंदावन ऐसा है तो वृंदावन कैसा होगा, और उस तड़प को बढ़ाएं। भगवान तड़प ही देखते हैं, और जब आपकी तड़प बढ़ेगी, आपका विरह बढ़ेगा, तो भगवान को वृंदावन बुलाएंगे। आपका एंट्री यहाँ से हो रहा है, यहाँ से आपका मनोभाव और बढ़ेगा, आप देखेंगे वृंदावन को तो आपका और भाव आएगा, अरे वृंदावन जाना है, जाना है, जाना है, देखना है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर एक तरीके समझिए कि आप धाम में ही वास किए हैं, तो धाम वास भी हो गया। और मूर्तेर श्रद्धा या सेवन, बहुत सारे मंदिर की परिक्रमा करेंगे, जितने भी आचार्य गणों के प्रमुख प्रमुख विग्रह हैं, मंदिर है, सबका दर्शन यहाँ पे होगा। तो उनके सामने आप प्रणाम करिए, अपने मन मन के भाव को व्यक्त करिए, उनसे प्रार्थना करिए, हाँ, कि भगवान आपको शक्ति दें, आपकी मति को स्थिर रखें उनके चरणों कमलों में लगाकर, भगवान वृंदावन में वास दें। ऐसे अपने अपने मनोभाव के अनुसार आप लोग प्रार्थना करिए, तो आप लोगों को आज ये पूरा पूरा अवसर सुलभ है आत्मा का कल्याण करने के लिए, तो आप लोग इसका लाभ लीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ हिज ग्रेस प्रेमानंद प्रभु से कि आएँ और आप लोगों को यहाँ के महिमा के, यहाँ के महात्म्य के विषय में बताइए। तो एक बार जोरदार तरीके से महामंत्र के द्वारा प्रभु जी का स्वागत करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। प्रेमानंद प्रभु के बारे में मैं जस्ट थोड़ा बताना चाहूंगा। वो मुझे एक प्रोग्राम में 99 में मलाड़ में आते थे। मलाड़ में 99 से वो भक्त बने और उसके 2 साल के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया। और मुझे याद है जब पहली बार वो मुझे मिले थे तो प्रभु जी बहुत ही हंसी मजाक करते थे और कभी मैंने सोचा नहीं था कि वो क्लास देंगे। अभी वो मेरे प्रोग्राम में आके, मैंने उनको प्रीच किया था, मेरे प्रोग्राम में आके वो क्लास देते हैं हर शनिवार को। उनका हर रोज क्लास रहता है। मंडे को उनके 2 क्लास रहते हैं, संडे को उनके 2 क्लास रहते हैं, एक वीक में वो 9 क्लास देते हैं। तो गुजराती में भी देते हैं, मस्कत कांग्रीगेशन को दे रहे हैं, अबू धाबी कांग्रीगेशन को दे रहे हैं, और कोई फॉरेन कंट्री के कांग्रीगेशन को दे रहे हैं, भगवत गीता क्लास दे रहे हैं। यहाँ के विजिटर्स का एक डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उन्हें क्लास दे रहे हैं। तो आज हम हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे गोवर्धन जो हम परिक्रमा करने जा रहे हैं वृंदावन फॉरेस्ट के बारे में, वो बताएंगे 11:10, 11:15 तक, और फिर हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। और हमने जो ग्रुप बनाए हैं वो ग्रुप के लीडर्स यहाँ पे आपके सामने खड़े रहेंगे। हाँ, क्लास के बाद आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे बस वाइज, 1 मिनट का खाली। और ग्रुप लीडर्स आपको जो बस वाइज है आप उनके साथ ज्वाइंट होके अलग अलग स्पॉट से वृंदावन परिक्रमा स्टार्ट होगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातां सहगनारघुनाथां वितं तं सजीवं सावयीतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखां वितंश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है गोवर्धन इको विलेज में। जैसे प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से बता रहे थे कि ये जो रूप गोस्वामी के जो 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहे थे और कैसे आपको इन 5ों का लाभ होगा। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि आप ये क्या बार बार वृंदावन 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 बोल रहे हैं, क्या है ये वृंदावन में? तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है आप चलो मैं आपको लेके चलता हूं। तो अर्जुन रथ हाँक रहे थे और कृष्ण को लेके गए और वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। तो अर्जुन बोले अरे मैंने तो आपको पूछा आप वृंदावन वृंदावन बोलते रहते हैं। तो भगवान बोले रुको बताता हूं
तो वो जो चोटी के ऊपर वो थे, उस वो पूरा पर्वत जो था उसमें से धुएं निकल रहे थे और बहुत सारे पर्वत थे वहां पे, और उस पर्वत में से सब ऋषि लोग बाहर आए और अर्जुन उनको देख के कुछ बोले नहीं कि अभी भगवान कुछ बताएंगे। और वो लोग आने के बाद भगवान ने कुछ कहा नहीं और वो ऋषि लोग आ गए, बोले हमारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए हैं तो हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। तो ऋषि लोग आके बोलते हैं कि अरे हमको आजीवन वास चाहिए वृंदावन में, ऐसा उनका मांग था भगवान के से कि हमने इतनी तपस्या की। तो अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या कह रहे हैं। तो भगवान समझाते हैं कि ये जो थे ये ऋषि थे, तो ये जो हम जिस पे खड़े हैं ये कंकाल है और उनके ऐशिष है, राख है, उसके ऊपर ये पहाड़ बन गया है। तो ये ऋषि लोग ने जन्म लिया, तपस्या की, फिर वहां पे शरीर छोड़ दिया, वापस जन्म लिया, वहीं पे बैठ के फिर तपस्या की, ऐसा करते करते कंकाल का पूरा पहाड़ बन गया और अभी भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं और अभी उनकी इच्छा है कि हमें आजीवन वास चाहिए वृंदावन में। तो भगवान बोलते रुको, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको कितना दिन का वास मिल सकता है। तो उनकी तपस्या के कैलकुलेशन किया भगवान ने, तो बताया केवल 3 दिन रह सकते हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट है वृंदावन का वास। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक में कि व्यक्ति टिकट खरीद के कभी वृंदावन नहीं जा सकता, तो क्या बिना टिकट जाएगा? जब तक श्रीमती राधा रानी का, वृंद देवी का कृपा नहीं होगा तब तक वो वृंदावन जा नहीं सकता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे तो रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का मन शिक्षा में एक बहुत सुंदर श्लोक है। वो बोलते हैं, जैसे प्रभु जी बोलते हैं ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं ये 8 है। वो बोलते हैं गुरु गोष्ठे गोष्ठालये सुजने भू सुरगने स्वमंत्रे श्री नामने व्रजन वयुवा द्वंद शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरुरतिमा पूर्वम अतितराम अहे स्वांत भ्राता चटुभी अभियाचे धृतपद। तो यह मन शिक्षा है, हमको मन शिक्षा देता है ना, तो रघुनाथ दास गोस्वामी मन को शिक्षा देते हैं। तो बोलते हैं मेरे मन, ओ मेरे भाई, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, ये 8 चीज को पकड़ के, बाकी ये तेरा दम है इसको छोड़ दे। तो ये 8 चीज क्या है? गुरु, गुरु का आश्रय, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु जो ब्रिजवासी लोग हैं, स्वजने, स्वजने मतलब वहां पे जो रहते हैं, ब्राह्मणास, फिर श्री मंत्रे नामने गायत्री मंत्र और राधा कृष्ण का सेवा। तो आपको ये चीज कैसे मिलेंगे? जब आप दम का करेंगे। तो अगर आप देखेंगे वृंदावन में सब चीज ऑर्डिनरी है, मतलब उसका कुछ ज्यादा कीमत नहीं है। भगवान पीकॉक फेदर पहनते हैं, उसका कुछ कीमत नहीं, राइट? ब्रज रज डस्ट, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि 5 चीज जो इंपॉर्टेंट है रूप गोस्वामी के हिसाब से, तो वृंदावन में भी 5 चीज बहुत पावरफुल है, गोवर्धन, यमुना, ब्रजरज, वृंद देवी और गोपेश्वर महादेव, ये 5 चीज बहुत ही शक्तिशाली है वृंदावन में। और आप लोग यहां पे वृंदावन में आए हैं तो आपसे ये निवेदन है कि आप लोग इतना ट्रेवल करके आए, एटलीस्ट 2-2.5 घंटा ट्रेवल किए हैं आपने, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जो वृंदावन है कैमरा में नहीं, आपके हृदय में खींच के लेके जाइए फोटोज, और इसके बारे में स्मरण करते रहिए। क्योंकि ये जो वृंदावन है जहां पे परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने रूप गोस्वामी के आधार पर 4.1 बिलियन पास्ट टेंस परफॉर्म किए हैं। अभी 4.1 बिलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब करोड़ों में पास्ट टाइम से 11.5 साल में। तो इतनी भगवान ने लीलाएं की, रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो हम लोग ये जो वृंदावन है ये क्रिएट करने का श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी 1971 में, न्यू वृंदावन में। प्रभुपाद जी जब भी वेस्ट वर्जीना न्यू वृंदावन में थे तो वहां पे उनकी ये इच्छा थी कि हमें ऐसा रेप्लिका ऑफ वृंदावन बनाना चाहिए, जहां पे शहर से जो लोग त्रस्त हो गए हैं, स्ट्रेस में हैं, वो लोग आके इस वृंदावन को देखें। और यहां पे 6 गोस्वामी के मंदिर बनाने हैं, गोवर्धन बनाना है, यमुना बनाना है, प्रभुपाद जी ने डिटेल्स में वो सब बताया था। तो उनके एक शिष्य परम पुरुष राधानाथ स्वामी महाराज भी वहां पे बैठे हुए थे, तो ये उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि ये प्रभुपाद की जो इच्छा है वृंदावन की ये होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के ऑनर में ये उन्होंने उनको एक गिफ्ट के रूप में ये बनाया है।
तो ये जो वृंदावन फॉरेस्ट है ये 8 एकड़ में स्प्रेड आउट है। यहाँ पे अराउंड 92 प्लेसेस है जो क्रिएट किए गई है। तो आपके जो गाइड है वो आपको बताएंगे कहाँ कहाँ जाना है कि नहीं। तो आप जितना ईगर होगा आपका सुनने का उतना वो सुनाएंगे। जैसे परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे तो 3.5 दिन के बाद परीक्षित महाराज को 2 श्लोकों में 10वां स्कंद बता दिया। तो परीक्षित महाराज बोलते रुको 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 रुको, निवृत्त्य तरसे उपगीयमाना भवोषधे श्रोत्र मनोभिरामा कौ उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरजते विना पशुगनाथ। कि आप एकदम परफेक्ट डॉक्टर हो सुखदेव गोस्वामी और मुझे भव रोग लगा है और आपके पास बराबर मेडिसिन है, वो आप मेडिसिन मुझे दीजिए। और आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे भूख और प्यास लग रही है। तो कैसे पता चलता है कि व्यक्ति को बहुत आतुरता है? जैसे मैं जब पहले स्कूल में था तो क्रिकेट मैच देखता था तो तभी मुझे भूख और प्यास नहीं लगता था, जबकि तभी मेरे घर पे टेलीविजन भी नहीं था और किसी और के घर पे जाके देखता था। तो एब्जॉर्प्शन, तो वैसा एब्जॉर्प्शन हमको जब हरिकथा में आएगा तो आदमी को भूख और प्यास लगता नहीं। तो परीक्षित महाराज 3.5 दिन से कुछ खाए नहीं पिए नहीं, तो वो 8 प्रश्न पूछते हैं और वो 8 प्रश्न लीड करते हैं 90 चैप्टर्स को, 90 अध्याय को। वो पहला प्रश्न पूछते हैं कि क्यों बलराम जी देवकी के भी पुत्र हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं। दूसरा पूछते हैं भगवान का जन्म होते ही वो नंदगांव क्यों चले गए। तीसरा पूछते हैं उन्होंने वहां पर कितना समय बिताया उनके साथ, क्या लीला की उन्होंने वृंदावन में। पांचवा पूछते हैं कंस को क्यों मारा। छठा पूछते हैं वृष्णियों के साथ कितना समय बिताया। सातवां कितनी रानियों के साथ विवाह किया। और आठवां द्वारका में कितने साल रहे। ये 8 प्रश्न में सुखदेव गोस्वामी फिर 90 अध्याय बोल देते हैं उनकी आतुरता देखते हुए सुखदेव परीक्षित महाराज की। तो ये जो वृंदावन है आप जितने आतुर होंगे उतने वो जो प्रभु जी आपको बताने वाले हैं वो भी आतुर होंगे। तो आपकी आतुरता आपका उत्साह उनको भी उत्साह देगा बताने के लिए। तो मैं तो सोचता हूं कि अगर देखो आप लोग इतने दूर से आए हैं पूरा वो करके आए हैं तो एक भी चीज मिस मत कीजिए, एक भी चीज मिस मत कीजिए, जितना हो सके आप उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए। स्पंज होता है ना, स्पंज तो कैसे पूरा चूस लेता है, वैसा आप सक कर लीजिए पूरा एक एक चीज जो वृंदावन के है यहां पे। तो ये जगह बनाने का पर्पस ये है कि ऐसा नहीं है कि हम उस वृंदावन को इस वृंदावन से रिप्लेस करना है। ये जगह बनाने का मकसद ये है कि आपको जो वृंदावन जाने के लिए उत्साह जागृत हो और आप में वो और ईगरनेस आए वृंदावन जाने के लिए। तो वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। तो हम गोवर्धन इको विलेज में हैं तो एक छोटी लीला के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हमारे इस वार्तक को यहां पर समाप्त करेंगे। तो ये जो गोवर्धन है ये जो दुनिया का सबसे पहला लॉकडाउन हुआ था 7 दिन 7 रात भगवान ने जब गोवर्धन उठाया था, लेकिन उनके उस लॉकडाउन में उनका नॉकडाउन नहीं हुआ था, हमारा नॉकडाउन हो गया था है कि नहीं। तो ये गोवर्धन लीला 7 दिन 7 रात भगवान ने उठाए तो वो लोग बहुत आनंद में थे। यहां तक कि जो 5 रस हैं जो भगवान अलग अलग अनुभव कर रहे थे उस गोवर्धन लीला में वो 5 रस एक साथ अनुभव करने को मिला, शांत दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 रस भगवान वहां पर अनुभव कर रहे थे क्योंकि पूरे ब्रिजवासी लोग उस गोवर्धन के नीचे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सुंदर इनके ऊपर एक दशकम लिखा है, बोलते हैं निजपति भुज दंड छत्र भावम प्रपद्य प्रतिहत मद दृष्टो दंड देवेंद्र गर्व अतुल प्रतुल शैल श्रेणी भूप प्रियम मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। तो बोलते निजपति भुज दंड के वृंदावन ने भगवान ने एक भी अस्त्र उठाए नहीं किसी राक्षस को मारने के लिए। पूतना को आया तो सांस अंदर ले लिया, त्रिणावत को दबा दिया, सट्टासुर को किक मार दिया, बक्कासुर को बाइफरकेट कर दिया जैसे एक पत्ता को बाइफरकेट करते हैं। तो बोलते निजपति भुज दंड छत्र भावम प्रपद्य, भगवान दंडा बन गए और आप छत्री बन गए। और आप कौन है? अतुल प्रतुल शैल श्रेणी भूप प्रियम में, आपके कंपैरिजन में कोई नहीं है गोवर्धन के कंपैरिजन में, और आप माउंटेनों के किंग हैं भूप प्रियम में। और क्यों आपको उठाया? प्रति हता मत दृष्टो दंड देवेंद्र गर्व, मतलब कितना गाली दे रहे इंद्र को, मतलब एक सा बोल सकते थे कि गर्वी था, गर्विश था नहीं, प्रति हता मत दृष्टो दंड देवेंद्र गर्व, उनका गर्व चूर करने के लिए। तो वृंदावन में अगर एंट्री करना है किसी को भी तो उद्धव भी गए थे वृंदावन, उन्होंने ज्ञान का डमरू बजाया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमको अगर बहुत कुछ बोलने आता है, हमको कुछ शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है, तो हम भक्त हैं। ऐसा किधर भी भगवत गीता में लिखा नहीं है, ना भागवत में किधर लिखा है। हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति फेमस है मतलब वो भक्त है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। जैसे सीधे कोला बेच को कोई पहचानता नहीं था, अरे ये तो केला बेचने वाला है, कुछ कोई जानता नहीं था। लेकिन जब महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला किया तो सबको पता चला। तो बेसिकली जो जितना भगवान का स्मरण करता है वो सबसे फेमस है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं कि व्हाट इज द रियल फेम, क्या है सबसे बड़ा फेम। तो रियल फेम है क्या है कि टू बी रिकॉग्नाइज एज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, कि मैं भगवान का भक्त हूं, ये सबसे बड़ा फेम है। ये रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन कितनी बार के रघुनाथ दास गोस्वामी की जो उनकी जो तपस्या थी और उन्होंने जो भीष्म वाव लिए थे वो पत्थर के ऊपर लकीर थी। वो बहुत अमीर घराने से थे, लेकिन अगर उनका आप डाइट सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। मतलब समझो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो क्या करते थे, जब वृंदावन में आए तो 3 दिन में एक बार केवल छाछ पीते थे, और फिर भी सोचते थे कि मैं कितना भोगी हूं। 22.5 घंटा उनका भजन शैली होता था, भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, 3 घंटा गौर कथा बोलते थे, वाचिक और मानसिक प्रणाम करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, ये उनका पूरा शेड्यूल होता था। तो ये जो गोवर्धन है वो बोलते निज निकट निवासम देही गोवर्धनतम, कि मुझे आपके उधर परमानेंट वास चाहिए। तो देखो कितना रेयर है, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं। तो श्री बलदेव विद्याभूषण जो आचार्य लोग हैं इन लाइनों के बीच में बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको यहां पे क्यों रहना है, वृंदावन तो बहुत बड़ा है, किधर और भी रह सकते हैं, इधर ही क्यों रहना है। तो बोलते प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे रचनति यवनूनो द्वंदमस्मिन अमंदम इति खिल खलनार्थम लग्न कस्त दयोर्मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, कि क्योंकि आपकी यहां पे बहुत सारी लीलाएं हो रही हैं गुफाओं में, तो मुझे वो सब लीलाओं का आस्वादन करना है, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, और बहुत सारी लीलाएं देखनी है मेरे को। तो गोवर्धन बोलते हैं अरे लीला तो सब जगह पे हुई वृंदावन में, यहीं पे क्यों रहना है आपको। बोले अनुपम मनिवेदी रत्न सिंहासनोवी रुहजर दर्शानु द्रोणी संगे सुरंगी सहबल सखी बीसन खेलयन सब प्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, कि यहां पे बहुत सारी भगवान की लीला है, मुझे आपकी ये सब लीलाओं का आनंद लेना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा 11 वर्ष बोलते हैं, और 9th वर्ष होने के बाद बोलते ठीक है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो अभी फाइनल ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। मतलब अभी सबने आपने रेफरेंस दिया किसी का, कह रहे इसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस है, बोले नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो अभी डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र छोड़ते, बोलते निरुपदि करुणे ना श्री सची नंदने ना त्वयि कपटि सतोपि त्वत्प्रिये नर्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्य योग्यताम ताम ग्रहणन निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, के निरुपदि करुणेन श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आपको सौंपा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला दी थी, तो ये जो गोवर्धन शिला है गोकुलानंदन टेम्पल देखेंगे तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का थंब प्रिंट है। बोले शिला दिला दिला गोवर्धन कृष्ण रे शरणे माला दिला दिला राधिका रे चरणे, जो गुंजमाला है वो श्रीमती राधा रानी रिप्रेजेंट करती है। तो बोलते हैं कि मुझे श्री सचिनंदन ने भेजा है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो गोवर्धन बोलते अरे पहले बोलना चाहिए था ना, ये सब बोलने का आवश्यकता नहीं होता था, कह रहे आपको उन्होंने भेजा है। तो ये है गोवर्धन के बारे में। और बेसिकली जो वृंदावन है, जब भगवान लीला करते हैं, जब भी उनको अपने ग्वाल बाल और गोपियों से मिलता है, तो जो जो कमल की तरह है वो, तो कमल श्रिंक हो जाता है लोटस, और जब भी कोई डीमन आता है तो कमल खुल जाता है। तो वृंदावन में अनेक लीलाएं हैं भगवान की, बाल लीलाओं के बारे में गोकुल महावन में है। तो यमुना के इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 7 फॉरेस्ट है, वन है, और इस तरफ 5 है, टोटल 12 वनों हैं। बरसाना भी है, नंदगांव भी है, और गोवर्धन यमुना, तो काफी चीज है आपको। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्रभु जी ने तो विस्तार रूप से इसके बारे में बताया। तो प्रभु जी ने जो कहा कि आपको ये 5ों चीज का यहां पे आनंद मिलेगा, तो ये पूरा आनंद आप लुटिए और अपने हृदय में रखिए इसको। क्योंकि भक्ति जो है ये कपूर की तरह है, इसको बहुत छुपा के रखना पड़ता है, अगर आपने ढक्कन खोल दिया तो कपूर उड़ जाता है। तो ये केवल आपके बीच में और भगवान के बीच में है, तो इसको अच्छी तरह आपके हृदय में छुपा के रखिए, एकदम सेफ जगह पे। जैसे व्यक्ति होता है ना, मारवाड़ी व्यक्ति अगर है तो पैसा कहाँ जगह छुपाता है, एकदम जा कोई देख ना ले, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो जान से ही प्यारा है, लेकिन वो जान ले भी सकता है, ऐसा भी है कि नहीं? सनातन गोस्वामी जब जा रहे थे, जब वो भाग गए वहां से चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, तो उनके सेवक के पास 8 गोल्ड कॉइन थे, 8 सोने के सिक्के थे, और एक व्यक्ति था, एस्ट्रोलॉजर था, तो वो उसका होटल भी था उसके साथ, तो उसको पता चल गया कि इस व्यक्ति के पास धन है, तो उस व्यक्ति ने उसका काफी आदर सम्मान किया, सब कुछ किया। तो सनातन गोस्वामी तो राजमंत्री बहुत चतुर थे, तो उन्हें लगा अरे ये इतना क्यों सम्मान करते, तो पूछा आपके पास कुछ है क्या? तो बोले हाँ 7 सोने के सिक्के हैं। तो बोले लाओ दे दो। तो लेते हैं और उसको दे देते हैं, बोलते मुझे आप पहाड़ पार करने के लिए मदद कर दो। तो बोलते नहीं 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 नहीं, मैं आपको एक्चुअली, अगर आप ये सिक्के नहीं दिए होते मुझे तो मैं आपको रात को मारने वाला ही था, मार डालता था, तो लेकिन अभी आपने मुझे दे दिए हैं तो मैं आपको वापस दे देता हूं और मैं आपको ये पहाड़ भी पार करा दूंगा। तो सनातन गोस्वामी बोलते अरे आप ले लो, अगर आप नहीं तो और कोई मार देगा, अभी आप मुझे केवल पहाड़ पार करा दो। तो बहुत सारी लीलाएं हैं, तो ऐसा एक लास्ट बोल के हम लोग इसको एंड करेंगे कि एच्छाई गोसाई व्रजे कोयलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, कि ये 6 गोस्वामी के माध्यम से हम वृंदावन को देख सकते हैं, उन्होंने वृंदावन में वास किया और ये लीला कहां कहां पे हुई है उनको प्रकट हुई। एच्छाई गोसाई व्रजे कोयलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, कि यहां पे कौन सी लीलाएं हुई। तो बहुत सारी अनंत लीला है, आपको टूर में बहुत सारे प्रभु जी लोग बताएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लेके यहाँ पे आए हैं, तो एक एक मोमेंट का आप हिसाब रखिए और हरि कीर्तन हरि कथा में पूरा भाग लीजिए। जय श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।